लंबे थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
सत्य वचन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओ, आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से ओबाद्याह नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक के लेखक का नाम ओबाद्याह है, जिसका अर्थ है यहोवा का दास अथवा यहोवा का उपासक, और इसका मुख्य विषय है एदोम का पतन। ओबाद्याह की नबुवत अर्थात भविष्यवाणी इतिहास के उस समय को दर्शाती है जिसमें एदोमी लोग यरूशलेम की लूटपाट करने के लिए अपने शत्रुओं से मिल गए थे। जी हां श्रोताओ, ये नबुवत या भविष्यवाणी का एक संक्षिप्त लेख है जिसमें चारों ओर एक रूपता दिखाई देती है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवारी। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह के मसासे भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। बच जाएंगे पाप अगर एक नजर करम तूने डाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बाइबल से अध्ययन कर रहे हैं, और आप सबको यह पता है कि पिछले अध्ययन में हमने आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन किया और वह हम सब के लिए अंतिम अध्ययन था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और ओबाद्याह की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इसके परिचय को देखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके पुस्तक उबद्याह नामक पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। इस समय हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को भी स्पर्श करें, उनसे बोले और बातचीत करें, ताकि वे जाने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और आज आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आज जब हम उबद्याह की पुस्तक को आरंभ करते हैं, आप हम सब के साथ होइए, हमारी सहायता कीजिए, ताकि सारी बातों के द्वारा हम आपको महिमा देने पाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम अपने अध्ययन को उबद्याह नामक पुस्तक से आरंभ करेंगे, सर्वप्रथम आप इस बात को जान लीजिए कि उबद्याह का अर्थ है यहोवा का सेवक। जी हाँ, यहोवा का सेवक। उबद्याह उन चार भविष्यद्वक्ताओं में से एक है जिनके विषय हम बस इतना ही जानते हैं कि उन्होंने भविष्यद्वाणी लिखी। अन्य तीन भविष्यद्वक्ता हैं हबक्कूक, हग्गै और मलाकी। ये चारों भविष्यद्वक्ता अज्ञात वश में हैं। उबद्याह भविष्यद्वाणी तो लिख गया, परंतु हम उसके बारे में और कुछ भी नहीं जानते हैं। वह अपने नाम के अनुकूल ही था, यहोवा का सेवक। सेवक ना तो अपनी वंशावली, ना अपनी उपलब्धियों और न ही अपने अनुभवों के विषय कुछ कहता है। वह अपने को आगे भी नहीं लाता है। वह अपने कामों से प्रकट करता है कि वह सेवक होने के योग्य है। अतः उबद्याह केवल एक भविष्यद्वक्ता है जिसने महान भविष्यद्वाणियां लिखी हैं। डॉक्टर पूसी का कहना है, परमेश्वर की यह इच्छा थी कि केवल उसका नाम और उसकी संक्षिप्त भविष्यद्वाणी संसार में जानी जाए। यद्यपि उबद्याह एक छोटी सी पुस्तक है, वह धर्मशास्त्र में परमाणु बम के समान है। उसमें एक अत्यधिक गंभीर संदेश है। जी हाँ, इस पुस्तक में सिर्फ एक ही अध्याय है, फिर भी यह गंभीर है। इस भविष्यवाणी के साथ समस्या यह है कि इसे इसराइल के इतिहास में कहाँ रखें? कुछ विद्वान इसकी तिथि 887 ईस्वी पूर्व बताते हैं, अर्थात यहोराम और खूनी अत्तल्याह का राज्यकाल, जिसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 16 से 26 पद में देखते हैं। तब हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर पूसी के अनुसार इसका समय यहोशापात का राज्यकाल है, जिसे हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 7 पद में देखते हैं। यद्यपि इस वृतांत में उबद्याह का नाम आता है, वह एक सामान्य नाम था और आवश्यक नहीं कि वह भविष्यद्वक्ता उबद्याह था। जी हाँ, केनन फरार के अनुसार इसकी तिथि 587 ईस्वी पूर्व की थी। डॉक्टर मुरहेट के अनुसार वह यर्मिया का समकालीन था। यह प्रश्न पद 11 पर निर्भर है। लिखा है, जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीनकर ले गए और पराए लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। या तो यह भविष्यवाणी है या भविष्यवाणी पूरी होने के बाद का इतिहास है। मेरे प्रियो, उचित तो यह है कि इसे इतिहास माना जाए। इस प्रकार ओबद्याह की भविष्यवाणी का समय 587 ईसवी पूर्व का है, जब बेबीलोन की सेना यहूदा वासियों को बंदी बनाकर ले गई थी और यर्मिया वहां भविष्यवाणी कर रहा था। इस भविष्यवाणी का विषय है एदोम का छोटा सा राष्ट्र। जी हां, एदोम का छोटा सा राष्ट्र। इसका मुख्य पद 6 है। एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया है। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए ओबद्याह की पुस्तक और इसके विषय को देखें, एदोम का विनाश और इसराइल का पुनःस्थापन। ओबद्याह की पुस्तक पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक है, जिसमें केवल 21 पद हैं। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि यह पुस्तक पढ़ने योग्य भी नहीं है, और यदि बाइबल से हटा भी दी गई तो इसको कोई भी स्मरण नहीं करेगा। कहने का अर्थ है कि यह स्मरण योग्य न होगी। तथापि संदेश की संक्षिप्तता इसे कम महत्वपूर्ण नहीं बनाती है या नहीं बताती है, न ही इसका मूल्य घटाती है। अन्य छोटे भविष्यद्वक्ताओं की नाई इसका संदेश प्रासंगिक, मूलभूत, व्यवहारिक और हृदय को छेदने वाला है। ये छोटे कहलाने वाले भविष्यद्वक्ता ज्वालामुखी नहीं है, वे तो वास्तव में स्पष्ट कर्मठता के साथ काम करते हैं। उनमें ठंडी राख नहीं, गर्म लावा है जो उनके जीवन से निकल रहा है। ओबद्याह की भविष्यवाणी एदोम के छोटे से राष्ट्र के संबंध में उसके विनाशकारी दंड की है। तो आइए हम देखें एदोम का दोष। ओबद्याह की पुस्तक उसके 1 अध्याय और 1 पद में लिखा है, ओबद्याह का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है। ओबद्याह सीधा सीधा कहता है कि यह परमेश्वर द्वारा दिया गया उसका दर्शन है। अब हम देखते हैं कि ओबद्याह कौन था। मैं पहले भी प्रस्तावना में आपसे कह चुका हूं कि ओबद्याह छोटे भविष्यद्वक्ताओं में से एक था और उसके नाम का अर्थ है यहोवा का सेवक। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, इस पुस्तक का मुख्य विषय एदोम है। अतः हमें एदोम की पृष्ठभूमि जानने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक का विवरण देखना होगा। वहां एसाव की वंशावली दी गई है, उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय उसके 8 और 9 पद में। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। यहां यह अभिलेख लिपिवत किया गया है और इसका उल्लेख 3 बार किया गया है। मूसा तो नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर का आत्मा जानता था कि यह महत्वपूर्ण है। एसाव एदोम था और एदोम ही एसाव है। अतः एदोमी एसाव वंशी थे और इसराइली याकूब के वंशज थे। एसाव और याकूब इसहाक रिबका से उत्पन्न जुड़वा भाई थे, परंतु स्वभाव में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थे। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय में रिबका के प्रसव का वर्णन है, 25 अध्याय 22 और 23 पद में। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे गर्भ से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और 1 राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। आरंभ ही से ये दोनों भाई परस्पर विरोधी थे। एसाव को शिकार की तलाश में, बाहर रहना अधिक अच्छा लगता था और याकूब को घर में रहकर खाना पकाना अच्छा लगता था। याकूब में आत्मिक विवेक था जो एसाव में नहीं था। एसाव शारीरिक मनुष्य था और आत्मिक बातों में रुचि नहीं रखता था। उसने तो अपने पहलौठे के अधिकार खा भी मान नहीं रखा और याकूब को एक कटोरा दाल में बेच दिया। इसे हम उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय उसके 30 से 34 पद में देखते हैं। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोमी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। मेरे प्रियो, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूरी दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यों एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं था कि इसहाक के घर में खाने की कमी थी कि एसाव को अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को बेचना पड़ा, परंतु यह कि उसकी क्षण भर की शारीरिक लालसा के कारण उसने अपना आत्मिक अधिकार खो दिया। पहलौठे का अधिकार रखने वाला परमेश्वर के संपर्क में होता था और परिवार का याजक था। वह परमेश्वर की वाचा का अधिकारी था। सच तो यह है कि एसाव ने कहा, मैं परमेश्वर से संबंध बनाए रखने की अपेक्षा पेट पूजा करना अधिक पसंद करूंगा। पेट पूजा करूंगा अर्थात दाल खाऊंगा। मेरे मित्रों, आज के विश्वासियों के लिए यह एक महान सत्य है। यह मसीही जनों का चित्रण है। विश्वासी के भीतर दो स्वभाव होते हैं जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मेरे प्रियो, ये दो स्वभाव हैं, नया स्वभाव और पुराना स्वभाव। ये दोनों स्वभाव एक दूसरे के विरोधी हैं। एसाव पुराने स्वभाव देह का प्रतीक है और याकूब नए स्वभाव आत्मा का प्रतीक है। एदोम का अर्थ है सुर्ख या धूप से जला। धर्मशास्त्र में धूप से जला मनुष्य वह है जो स्वर्ग की ज्योति को ग्रहण नहीं करता है। मेरे मित्रों, स्वर्ग की ज्योति या तो आपको बचा लेगी या जला देगी। यह सच है। एसाव देह का प्रतीक है जो एदोम कहलाया और याकूब आत्मा का प्रतीक है जो इस्राएल कहलाया अर्थात परमेश्वर का राजकुमार। अब एसाव को पुराने नियम की प्रथम पुस्तक में देखने के बाद अंतिम पुस्तक में उसके विषय यह एक विचित्र बात आप पढ़ें। मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों के स्थान बना डाला है। परमेश्वर के लिए ऐसा कहना असामान्य लगता है कि उसने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। इससे तो समस्या खड़ी हो जाती है। डॉक्टर ग्रिफिथ थॉमस के एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, मलाकी की पुस्तक में एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि परमेश्वर कहता है एसाव को अप्रिय जानकर। डॉक्टर थॉमस ने उत्तर दिया, मुझे भी इस पद से समस्या हो रही है, परंतु मेरी समस्या तुमसे कुछ अलग है। मैं यह तो समझ सकता हूँ कि वह एसाव को अति प्रिय जानता था, परंतु उसने याकूब से प्रेम किया, यह मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे मित्रों, उबद्याह की पुस्तक को महत्व प्रदान करने वाली एकमात्र बात यह है कि परमेश्वर के वचन में केवल यही एक पुस्तक है जो स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय क्यों जाना। इब्रानी भाषा के एक महान विद्वान ने उबद्याह पद 6 का अनुवाद इस प्रकार किया है, एसाव के विषय कैसा खुला वर्णन किया गया है, अर्थात हमारे अवलोकन के लिए पहली बार उसके विषय ऐसा वर्णन किया गया है। उबद्याह एसाव पर सूक्ष्म दृष्टि डालता है और उसे एदोम दिखाई देता है। उबद्याह की दृष्टि वास्तव में परमेश्वर का दृष्टिकोण है। एसाव को बड़ा करके देखने पर 250,000 छोटे छोटे एसाव दिखाई देते हैं जो एदोम राष्ट्र हैं। उबद्याह का वृतांत एसाव का विस्तृत चित्रण है, जैसे कि गाड़ी के टायर में पूरी हवा भरकर ही आप एक छोटे से सुराख अर्थात पंचर को देख पाते हैं। एसाव का जो अदृश्य दोष था वह अब 1,00,000 गुना बढ़कर एक राष्ट्र रूप में प्रकट हो रहा है। परमेश्वर ने आरंभ में नहीं कहा था कि वह एसाव को अप्रिय जानता था, परंतु उससे अपनी बात कहने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी कि एसाव एक जाति बन जाए, तब प्रकट होगा कि परमेश्वर एसाव से क्यों घृणा करता है। परमेश्वर को यह बात कहने के लिए कि वह याकूब से प्रेम करता है और एसाव को अप्रिय जानता है, पुराने नियम की अंतिम पुस्तक तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। मेरे प्रियो, ये दोनों भाई एक जाति बन गए थे, याकूब इसराइल बना और एसाव एदोम बना। इसराइल को परमेश्वर ने सदियों तक सामर्थी रूप से काम में लिया। इसराइल में मूसा, यहोशू, शामुएल, दाऊद, हिजकिया, नहमिया, एजरा जैसे लोग उत्पन्न हुए थे, परंतु एसाव से उत्पन्न जाति अभक्त जाति थी। एदोम ने परमेश्वर का तिरस्कार किया, उसमें ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और उस जाति से घृणा की। मेरे प्रियो, इसे जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि परमेश्वर ने एसाव को क्यों अप्रिय जाना। जैसे जैसे हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से और अधिक हम एसाव के बारे में जानेंगे, लेकिन यहां पर हमें लेखक बताना चाहता है कि एसाव एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति से एक राष्ट्र बना और राष्ट्र के द्वारा से जो पाप और घमंड आए, जिसके कारण से परमेश्वर को एसाव से घृणा करना पड़ा। मेरे प्रियो, और अधिक गहरे रूप में इस पुस्तक को जानना और समझना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह पुस्तक सिर्फ एक ही अध्याय की पुस्तक है और इसके जो गुण है हमारे जीवन के लिए अति लाभकारी है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आज आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है, एसाव के समान का जीवन है या इसराइल के समान, क्योंकि यहां पर दो जातियां हैं, एक एसाव के द्वारा एदोम राष्ट्र बना और याकूब के द्वारा इसराइल राष्ट्र बना, और परमेश्वर ने दोनों को एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न किया था, परंतु दोनों के स्वभाव भिन्न थे। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, वसरते कि हम परमेश्वर की उन बातों को आदर दें जैसा कि याकूब ने अपने परमेश्वर को आदर दिया और एसाव अपने पहलौठे का आदर नहीं दिया, और यही कारण हुआ कि एसाव बढ़ते गया और परमेश्वर से दूर होता चला गया। परमेश्वर बार बार हमें हमारे जीवन में मौका देता है ताकि हम उसकी ओर फिर जाएं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी अद्भुत कार्य करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर के प्रार्थना करें ताकि हम भी याकूब के समान उन आशीषों को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर हमसे और अधिक प्यार करने पाए। तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए ताकि हम प्रभु के वचन को और अधिक गहराई से जानें और उससे प्रेम करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस ओबद्याह की पुस्तक के लिए जिसके माध्यम से आप हमें सिखा रहे हैं। ओबद्याह जो यहोवा का सेवक है, एसाव जो एदोम राष्ट्र है, याकूब जो इसराइल राष्ट्र है, और आज आप हमें बताना चाहते हैं कि आप किससे प्रेम करते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे श्रोता भाई बहन इस समय अपने जीवन में क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप उनके जीवन में याकूब को डाल दें ताकि हर एक जीवन आपसे प्यार करने पाए, आपकी बातों को समझने पाए, आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक बुरी बातों को आप दूर करें। जैसे जैसे हम इस पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, आप प्रत्येक के हृदय की परत को खोलते जाएं ताकि आपकी उन गंभीर बातों को हम सब समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और आप में बलवंत होने पाएं। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दें और हर एक की सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोता, मुझे आशा है कि आपने आज के इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही इस पुस्तक की गंभीरता को समझ लिया है। जब हम अपने अगले अध्ययन में मिलेंगे तो निश्चय ही इसकी गंभीर बातों को और अधिक सीखेंगे। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहें, उसके प्रेम और वचन को थामे रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में, जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में, जीने के ढंग में मेरे मसीहा, तेरे हो खून की लाली। के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली, आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली, आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली, रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली।